आज का जो कार्यक्रम है, दीदी खास हमें समय देकर हम सबसे मिलने आई हैं। हम बहुत बहुत आभार है दीदी, आप अपना समय दिया, और हम सबके बहुत बहुत सौभाग्य हैं आज आपसे हुरूभुरू होने का अवसर मिला। और हम प्रभा दीदी से निवेदन करेंगे आपका स्वागत करें, इससे पहले हम बाबा की याद में बैठेंगे। चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज बनने के बाद आप प्रथम बार ये ज्ञान सरोवर के भट्टी जो आयोजित हो रहा है।
मैं ज्ञान सरोवर में बहुत समय रही हूँ, तो जैसे ही नाम सुनती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरा, गुजरात से भी मेरा पहले दिन से ही कनेक्शन है। आप सबको शायद मालूम होगा कि नहीं, कि बाबा ने मुझे, मैं अभी उन दिनों में कॉलेज पूरा ही किया था, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम अहमदाबाद जाओ, वहां पर मकान लेकर के और सेवा शुरू होनी चाहिए। तो क्या कारण था मालूम नहीं, मेरे तो गुजराती आती नहीं थी, और वहां पर जब तक आप गुजराती में बात नहीं करेंगे ना, मकान नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा एक लौकिक मामा होता था, बड़े मामा, तो उनको बाबा जानते थे, नाम राम पंजाबी था। तो उस बोध गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पर था, तो बाबा ने कहा जाओ उनके पास, उनके द्वारा मकान लो। एक डेढ़ महीना हमें लगा मकान ढूंढते रहे, और कहीं लौकिक में रहो तो एक टाइम तो भोजन बनाते थे, पर अहमदाबाद की मूंगफली शायद बहुत अच्छी होती है, नमकीन रहे तो रास्ते में मूंगफली ले लेते थे और वो ही खाते थे, उससे थोड़ा सा जैसे पेट भर जाता।
भरूच की मूंगफली होती हाँ। थी अहमदाबाद में मूंगफली भरूच की प्रसिद्ध है
हाँ। तो वो कनेक्शन भी रहता है, और ऐसे भी तो देखो बहुत नजदीक है मधुबन के, शांतिवन के। अभी भी सबसे तो नहीं मिल पाते हैं जब शांतिवन में होते हैं, पर काफी बहनें आती हैं, मिलती हैं, और हर प्रकार से। तो बहुत ही सरल स्वभाव और मिलनसार, सहयोगी, बहुत बहुत विशेषताएं हैं। मैं तो बाबा की जब समर्पित बहनों को देखती हूँ तो मेरे दिल में इतना प्यार हर एक के प्रति, कि सभी ने ही बाबा को पहचान कर अपने जीवन में ये निश्चय किया कि हम समर्पित हो, सारे जीवन में सेवाधारी, सहयोगी बन करके रहेंगे। बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प है। हम सभी रूहानी यात्री हैं, और यात्रा में एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी होता है। दोनों तरह का सहयोग चाहिए होता है, मॉरली, नैतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, क्योंकि हर एक, चाहे हम, एक ही यात्रा है हमारी, पर हर एक की अपनी जीवन कहानी, कर्मों का हिसाब किताब, तो परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। और स्थितियों में भी आप देखिए कि कई बार आपके साथ जो रहने वाला है, कोई परिस्थिति आती है तो आप बहुत सोचते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोचता है। कईयों को चिंता करने की स्वभाव होता है, कईयों का नहीं होता है, नहीं? कोई तो फिक्र करते ही रहते हैं, पिछली बात याद आती ही रहती है, और कईयों को नहीं है। ऐसे ही भोजन है, नींद है, जो भौतिक है। तो चाहे साथ रहते हैं, सभी सेवाधारी हैं, यात्रा सबकी एक है, मंजिल सबकी एक है, गाइड सबका एक है, मैप सबके पास, पढ़ाई सबकी सेम है, लेकिन तो भी हर एक की पर्सनल लाइफ में भिन्न भिन्न तरह के अपने जो स्वभाव संस्कार है उसके आधार पर न केवल परिस्थिति आती है, परंतु परिस्थितियों का सामना करना, उसका रेस्पॉन्स देना, वो सबका भिन्न भिन्न होता है। तो मेरे को भी करीब प्रभा बहन को याद है, वो भी शुरू से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो 65 साल से भी ऊपर बाबा के पास जब आए थे, मेरी 15-16 साल की आयु थी। और कहानी ये सुनो आप, तो मधुबन क्या था, पांडवन क्या था, बाबा ने कैसे हम बच्चों को इतना आकर्षित किया, ना तो कोई रहने का ठीक से स्थान, ना तो स्नान करने का स्थान, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों के चूल्हे पर भोजन बनाते थे। और हम सभी अच्छे परिवारों से आए, पर उस समय इतना रूहानी नशा था कि कुछ भी, सब कुछ नहीं लगता था कठिन है। और करते भी क्या थे, भोजन बनाना है, तकिए बनाने हैं, गद्दे बनाने हैं, सिलाई करवानी है ग्रुप से, कर्म योग करते थे। आजकल तो इतना नहीं होता है जो पार्टी आती है सेवाधारी, लेकिन जनरल नहीं है, तब तो ये सब होता था। तो सबसे बड़ा जो हमें वर्तमान समय यज्ञ को आहुति चाहिए, नहीं यज्ञ में आहुति डालते रहते हैं, तो जो बड़े सूक्ष्म में दो बातें अभी, एक तो थोड़ा सा मैं और मेरापन, उसका त्याग बहुत जरूरी है। त्याग तो हमने बहुत किया है, लेकिन सदा ही निमित भाव रहे। देखो करण करावन हाथ चाहे बाबा है, पर जितना जिसमें निमित भाव होता है ना, हमने तो कभी भी शुरू से, जब हम आए थे तो बाबा बहुत नहीं थी मैंने भाई, तो बाबा शुरू से मीटिंग होती थी प्लानिंग की, सेवा की, यज्ञ की, चाहे दादी प्रकाश मणि तो मुझे बिठाती थी। शायद उनको पता था कि जहां भी जाएंगे, अमेरिका में भी बहुत बड़ा रिट्रीट प्लान, तो जो कुछ हमने वहां सीखा है वो हमें करना होगा यज्ञ के लिए। पर एक बात जरूर ध्यान रहती थी कि बाबा सेवा दे। मैंने सेवा मांगी, मुझे सेवा करनी है, हाँ तैयार रहना है। तो एक बार दादी जानकी ने बहुत अच्छी मिसाल सुनाई कि उनके पास एक बहन थी, वो भाषण करने में बहुत अच्छी थी, जब बोलती थी तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। तो और भी 3-4 बहनें थी, तो जरूर होता ही है आजकल तो, जो अच्छा बोलता है उनको इनविटेशन मिलते रहते हैं, ज्यादा चांसेस मिलते हैं ना। तो दूसरी बहनें कहने लगी कि भाई मेरा क्या, मेरा क्या। तो एक बार जिस बहन का भाषण था, मुख्य बहन का, वो उसकी तबीयत थोड़ा देर पहले, भाषण से थोड़ी देर पहले खराब हो गई। तो दादी ने कहा ये तो अच्छा अवसर है, तो वो जो दूसरी बहन थी ना, उसको बोला भाई आज आपको भाषण करना है। तो बहुत घबरा गई, अचानक आप लोग कह रहे हैं, मैं तो तैयार भी नहीं हूं, पहले बताना चाहिए था, मतलब वो तैयार नहीं थी। तो दादी इसलिए मिसाल देती है कि आप लोग तैयार रहो, बाबा आपको किसी समय भी वो कर सकता है। हम लोग यहाँ पर हैं, आपको पता है कि यूएन में हमारा है ऑफिस। तो एक बार हमारे यहाँ एक बहन थी लंदन की, छोटी बहनी थी, तो वो आई हुई थी, तो हम लोग कार में जा रहे थे, उसको हमने कहा तुम ट्रेन में जाके पहुंच जाओ, ट्रैफिक होती है शायद हम लेट हो। तो जैसे ही वो पहुंची तो टेलीविजन वाले वहां खड़े हुए थे, तो उन्होंने उसकी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। जब तक वो कहे गए कि अभी आ रहे हैं बड़े लोग, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। उस बहन ने, वो शुरू से हिम्मत वाली थी, उसने बहुत अच्छे उत्तर भी दे दिए। और मतलब कहने का कि हमें ये नहीं हो कि अवसर एवर रेडी रहो तो बाबा निमित्त बनाएगा। हम लोगों को दीदी मनमोहिनी ऐसे ही अचानक कहेगी कि आपको भी जाओ क्लास कराओ, तो मैंने कहा थोड़ा पहले बताते ना, कम से कम 10-15 मिनट तो दो। तो दीदी ने पता है क्या बोला कि आप गंगा हो ना, नदी हो ना, मैंने कहा हाँ। तो बोला जो नदी है गंगा नदी में लोग बताएंगे क्या कि अभी हम नहाने आ रहे हैं तुम बहो। तो गंगा नदी तो बहती रहती है, जिस समय जिसको चाहिए डुबकी लगा ले। तो एवर रेडी रहना है और बहते रहना है। तो उस समय मुझे अभी तक भी मुझे वो बात इसलिए याद आती है कि एक तो जो देखो गंगा का पानी शीतल है, आप लोग गए होंगे हरिद्वार में और खासकर हर की पौड़ी पर आप बैठो तो आपको दिखाई देता है कैसे गंगा बह रही है और उसके साथ सब कुछ बहता जा रहा है। तो बहुत स्वच्छ, जैसे कि बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही स्वच्छ जो है ना, बहुत ही स्वच्छ रहो और फ्लो करते रहो। ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, हर 2 घंटे के पास अपने पास कोई ना कोई अच्छी पॉइंट हो। जैसे वो तब होती है जब हम जो ज्ञान है स्मृति में उसको स्वरूप में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है। तो जब मुझे प्रैक्टिकल में लाना है तो मनन चिंतन तो करना पड़ेगा ना। आपने खाना है भाई, ये सब्जी ऐसे बनेगी, रेसिपी ले ली, जब स्टोव पर आते हैं तब पता लगता है कि कौन सी बात, अरे ये क्या करना था, कितना डालना था, मसाला क्या नहीं, ऐसे जैसे। इसका मतलब ही नहीं कि मुझे सारा दिन बोलते रहना है, नहीं, तैयार रहना है हर प्रकार से। तो एवर रेडी, कई लोग सोचते हैं कि मतलब जाने के लिए तैयार, पर जाने से पहले तो अभी बहुत कुछ करना है ना। तो निमित्त भाव से अंदर भरपूर रहे हम। और एक सिखाने का तरीका, सीखने का तरीका वाणी से होता है और दूसरा कर्म से, एक उदाहरण रहना। हम लोग जब आए बाबा के पास तो कहते थे कि साधारण नहीं उदाहरण, और साधारण ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, आदर्श ब्रह्मा कुमारी। बाबा भी कहता था देखो मैं कोई बिजनेसमैन होता है तो एक ब्रीफ केस लेता है, उसमें अच्छे अच्छे सैंपल डालता है। तो हमको बाबा हमेशा कहता था कि बाबा किनको साथ ले जाएगा जो अब खुद में एक उदाहरण होगा, साधारण नहीं। साधारण तो सैंपल नहीं हो सकता ना, सैंपल तो स्पेशल वाला ही दिखाया जाता है। तो बाबा हमेशा हमको कहते थे बच्चे एक दिन आप लोग सभी विश्व के टीवी पर होंगे, पीस के एम्बेसडर हो, ऐसे करते करते। बाबा उमंग उत्साह तो लाते ही थे परंतु तैयार भी रहना है। अपनी चाहे मनसा के लिए सेवा मिले, वाणी के लिए सेवा मिले, कर्म के लिए मिले। और कर्म भी मैं इस प्रकार से करूं, इतने एक्यूरेट तरीके से करूं हर कर्म कि मेरे साथी भी सीखते जाएं, मैं भी सीखूं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गुण होता है लर्न करने का, सीखने का, क्योंकि सिखाया जाता है पर सीखने खुद को होता है नहीं। आप सभी यहां पर आए हैं अपने को भरपूर करने के लिए आए हैं और बहुत कुछ आगे हम क्या करें सीखने के लिए आए हैं। तो यही लक्ष्य से बठी की जाती है या मधुबन में आया जाता है। तो सीखने के लिए मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में दादियों के साथ रह के सबसे बड़ी शक्ति फिर हमारे अंदर है निर्णय शक्ति. तो निर्णय करने में निष्पक्ष होना जरूरी होता है. अगर कभी भी निर्णय पक्षपात से किया जाता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये नहीं है, तो पक्ष ले, जैसे एक इम्प्रेशन लेके आपने, तो अपनी सच्चाई से, निस्वार्थ से, तो निर्णय शक्ति तो दादियों के पास एक लक्ष्य रहता था. देखो, एक होता है कर्म, सुकर्म, विकर्म, और बहुत समय से बात नहीं चली होती. एक होता है अकर्म, और अकर्मी जीवन से कर्मातीत स्थिति बनती है. तो अकर्मी का मतलब ये हो गया कि आप न्यूट्रल हैं. तो हम लोग कभी भी, कभी ऐसी परिस्थिति होती थी तो गुलजार दादी, प्रकाशमणी दादी या दादी जानकी, निर्वैर भाई, सब मिलके उनका जो भी कहना, बोलना, लिखना, निर्णय करना अकर्मी टाइप, न्यूट्रल था. इसके फेवर में नहीं, उसके फेवर में नहीं, इसके फेवर. तो वो मुझे बहुत सीखने को मिला. और किसी से कुछ होता भी है भूल, परंतु एक निर्दोष दृष्टि. मालूम है कि गलत है, पर हमारी दृष्टि में दोष ना आ जाए किसी का. और हम सेवाधारी रहें, परंतु हम सर्वेंट नहीं है. सेवा में और नौकरी में बहुत फर्क है, राइट? तो अपना सबको समान रहे, अभिमान नहीं हो, समान हो, तो समान में मुझे बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की जो मर्यादाएं हैं, बाबा ने जो दिनचर्या दी है, मुझे उस पर चलना ही है. बहुत समय तो मैं भारत के सेवा केंद्रों पर नहीं गई हूं, पर जब पहले जाती थी तो मैं ये देखती थी कि कई लोग अमृत वेले कर रहे हैं सभी योग. और एक बहन को, मतलब कभी जरूरी होता है तो और है, खाना बनाना था तो उसने कुकर रख दिया, तो बहुत आवाज हो रही थी अमृत वेले. मैंने बोला भाई ये तो कैसे योग होगा. उस बहन को मैंने बोला, उसको भी ये प्रश्न था मन में कि कैसे करना चाहिए. एक जगह मैं गई यहां पर विदेश में, तो उस बहन को बहुत देर से सोने की नेचर थी, तो वो सब करती थी, फिर 10:30 बजे बर्तन मानना शुरू करती. मैंने कहा भाई बहुत आवाज होती है बर्तन की, मैं तो 2-4 दिन ही थी, मेरे को यही टाइम अच्छा लगता है. पर अभी दूसरी बहनें जो थी तो उनको भी वही उसी टाइम ही करना है. तो मेरे से वो प्रश्न पूछते थे कि हम क्या माने. बाबा तो कहता है कि बच्चे चलो 10:30 तक, कभी कभी 11 बज जाते हैं, प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, कोशिश तो यही करते हैं. बाबा कहता था 10 और 12 के बीच में बहुत अच्छा, ऐसे भी बॉडी के लिए वो नींद बहुत अच्छी होती है. ऐसे ही अमृत वेला हर स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, बाबा के श्रीमत के आधार से होना ही चाहिए. तो अपने सामने हमारा गाइड क्या है? श्रीमत। तो जो सेवाधारी होगा वो हमेशा अपनी दिनचर्या, अपना अंदर का मनन चिंतन, तो उसके लिए मैंने देखा है कि बाबा हमको कहते थे दो बार तो शरीर नहलाते हैं ना, शरीर को, आत्मा को भी दो बार तो स्नान कराओ कम से कम, मुरली दो बार तो पढ़ो। तो मुरली में भी एक सुनना होता है, एक पढ़ना होता है, एक स्टडी करना होता है। मैं मुरली पढ़ती हूँ, मुरली सुनती हूँ, फिर मुरली के नोट्स बनाती हूँ तीन, और फिर शाम को कुछ ऐसा रेस्ट का वो बना के फिर मुरली रिवाइज करते हैं। तो वो जो शाम की करते हैं तो शाम को योग ज्ञान आपस में जो कुछ भी क्लास चलती है तो अपने पास फ्रेश पॉइंट्स भी होती है। फिर दादियों ने तो इतना मुरली का आधार लिया, दादी प्रकाशमणि थी हमारी, दादी जानकी थी, उनके पलंग के साथ एक कुर्सी जरूर होती थी और एक लैंप। हम लोगों का भी ऐसा ही है क्योंकि जब नींद नहीं आती तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और ऐसे भी कमरे में बेड पे तो नहीं बैठते ना, तो साथ में एक छोटा लैंप और मुरली। जग गए, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, आज तो नींद नहीं आ रही नहीं, और वो क्या करते थे, मुरली लेके पढ़ लेते थे उस समय। हो सकता है और होता भी है कि ऐसे संकल्प नहीं चल रहे पर सूक्ष्म में कुछ संकल्पों का प्रभाव है। कल परसों मैंने बाबा को भोग लगाया, मैंने कहा बाबा ऐसी दृष्टि दो कि ये जो अंडर करंट है ना, मन का नीचे ऊपर, भावनाओं का नीचे ऊपर, फीलिंग और एनर्जी का नीचे ऊपर, ये संस्कारों से हो रहा है ना, पुराने परिस्थितियों से हो रहा है, वातावरण से हो रहा है। बाबा ऐसी दृष्टि दो कि वो पूरा हो जाए, क्योंकि हमें उमंग सा है, खुशी है, मत है, कर भी रहे हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि बड़ा सूक्ष्म में, और वो प्रभाव होता है अपने संस्कारों का। मुझे अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा बच्चों से प्यार नहीं होता है, ग्रैंड चिल्ड्रन से ज्यादा होता है। तो ये जो बाबा ने कहा ना, जो विकार तो चले गए पर जो कमजोरी रह गई विकार की, जिस पर मामा कहती थी बीमारी चली जाती है पर बीमारी की कमजोरी को बहुत टाइम लगता है, तो विकार तो छोड़ दिए, क्रोध तो छोड़ दिया, लेकिन आवेश तो आ जाता है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी निराश भी हो जाते हैं। तो ये जो इमर्ज हो जाते हैं ना, जिसको हम छोटे मोटे कहें, छोटी मोटी बातें, बड़ी तो पार कर ली नहीं, ऊंची ऊंची दीवारों से, वो गीत गाते थे ना हम लोग, वो दीवारें पार करके तो आ गए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें लग जाती है मन को, चित को, चिंतन चलता है, और फिर छोटी को बड़ी तो बनाना नहीं है, बड़ी को छोटी करके नहीं, बाबा कहते हैं पहाड़ को राई बनाओ, रुई बनाओ, फिर उड़ा दो। तो इस तरह से वर्तमान समय पर हर एक को अपनी जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टडी पर। सब कहते हैं योग ज्यादा करना है, याद ज्यादा करना है, पर वो बिना स्टडी के कैसे बढ़ेगा ना। दीदी मनमोहिनी कहती थी अगर इतना भी दिन में कई बार बोलो आज बाबा ने ये बताया, दादी है दीदी है, आपस में आजकल हम और सब सेवा की बातें करते हैं पर ज्ञान की रोहन रहन तो दादियों का आपस का जो संबंध था वो ज्ञान की रूहान के आधार पर था, उनका जो प्रेम था रूहानी प्यार था क्योंकि ज्ञान की लेन देन थी। तो इस तरीके से जो अपनी स्थिति को हम लोग अचल अडोल और एक रस बनाना चाहते हैं, तो आप तैयार होते जा रहे हैं ना, ये सब जब होगा तो आप तैयार हो रहे हैं सेवा के लिए, तैयार हो रहे हैं एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए, तैयार हो रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा अभी ईश्वरी पढ़ाई मिल रही है, इससे ऊंची क्या पढ़ाई पढ़ोगे। मेरे बचपन में मुझे इतना प्यार नहीं मिला, अभी बाबा तो दे रहा है ना, तो पास्ट में भी मत जाओ। बाबा दे रहा है प्यार, टीचर पढ़ा रहा है, सदगुरु वरदान दे रहा है, और क्या चाहिए। सदा कदम कदम पर पदम है, बाबा की शिक्षाएं हमें याद रहे हमेशा। तो जितनी शिक्षाएं याद होती है ना, शिक्षक भी है और एक वर्ड आता है रक्षक भी है, तो रक्षा आपकी शिक्षा से हो रही है। नहीं याद आती है तो दीदी कहती थी मन मना, मनन करते करते मन मना हो जाऊं। कई बार ऐसा होता है कि अगर एकाग्रता नहीं हो रही है, एकाग्रता नहीं हो रही है तो मनन करो। जल्दी गुलजार भी दो तीन दिन पहले हम क्लास सुन रहे थे, बोला ऐसे तो साइलेंस में रहो, पर जब संकल्प चलते हैं एकाग्रता के लिए मनन करते करते मन मना भो। ये दीदी मनमोहिनी का महामंत्र था जो अभी भी मुझे बहुत काम आता है कि मनन करते करते मन मना भाव एकाग्रता हो जाएगी। तो इसलिए स्टडी है, पर स्टडी के फिर योग भी अच्छा रहता है क्योंकि और बातें फिर बुद्धि में। एक बार हमने दादी जानकी को कहा इतना दिन भर ज्ञान बोलते रहते हो, इतना ज्ञान और कोई बात नहीं करते आप, कहते मेरे पास कुछ और है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ज्ञान ही है, तो मैं ज्ञान की ही बात करती हूँ। हम लोगों को तो कई बातें करते हैं, तो किस तरह से हम अपनी इस भरपूर अपने को इतना करें ज्ञान से कि एक स्वाभाविक तौर से बाबा की याद और बाबा की याद है तो धारणा भी अच्छी होगी और सेवा के भी लायक बनेंगे। नहीं मेरा तो अपना पर्सनल सारी लाइफ का यही अनुभव है कि अपनी अपने ऊपर अपनी स्टडी पर ध्यान दो, योग पे ध्यान दो और निमित्त भाव रखो बाबा सेवा के निमित्त। किसी ने कितनी सेवाएं हुई ना, अभी शांतिवन में थी तो बात हो रही थी, नेहरू था पहले, फिर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट था, उनकी सेवा उस समय पर हम उनसे मिलने जाते थे। फिर इंदिरा गांधी आई, उसकी बहुत ही बार मिलना होता था, वो भी याद करती थी कई बार। तो वीआईपी की सेवा तो कोई, वो तो अगर हम तैयार हैं वो तो बाबा कराते रहते हैं ना, अभी भी हो रही है, उस समय भी थी। तो कईयों को बहुत होता है कि मैं वीआईपी सेवा करूं, आप सिर्फ निमित भाव रखो, तैयार रहो। सबसे बड़ी बात है जो बाबा ने कहा ना उस दिन, झलक और फलक मूर्ति बनो। बाबा एग्जाम्पल देता है कई रास्ते में, ये अबू जाते हैं तो हनुमान का मंदिर था, वहां एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने थोड़ा पत्थर रखा, फिर छोटी हनुमान, अभी बड़ा मंदिर बन गया। तो मंदिर बनने में तो देर नहीं लगेगी, पर मूर्ति तो होनी चाहिए ना। मैंने एक दिन यही बोला, बड़ा मकान हो, बड़ा ये हो, मैंने कहा देवी बन जाओ, मकान तो बहुत बड़ा बनेगा। मूर्ति तो होनी चाहिए ना शोभनीय, मूर्ति बनेगी तो पूजनीय है, पूजा वाले भी होंगे और मंदिर भी बनेगा। मैं क्यों सोचूं, देवी बनूं ना मैं तो। ऐसे एक अपना स्वरूप जो है, जो बाबा आजकल बहुत कह रहे हैं कि स्मृति को स्वरूप मिलाओ, इमर्ज करो। तो इसलिए जो थोड़े जो अंदर अभी भी संस्कार इमर्ज होते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, एक बार दादी गुलजार हम लोग उनके कॉटेज में जाते थे योग करने शाम को 7 से 7:30, कभी दादी जानकी के यहाँ जाते थे तो बैठे थे, तो मैंने देखा दादी एक टक दृष्टि ले रही थी बाबा से आधा घंटा। तो मैंने कहा दादी क्या कर रहे थे, कहती है मैं बाबा को, बाबा मेरे को सर्वशक्ति लानी है अपने में, मैं बाबा से दृष्टि से सर्वशक्ति ले रही थी। तो मैं भी अभी बैठती हूँ, बाबा सर्वशक्ति ही चाहिए, तभी तो पास विद ऑनर होंगे ना, सर्वशक्ति होंगे तो। तो अपने पुरुषार्थ ही जीवन में, पुरुषार्थ में की लगन में हम सदा रहे। मैं कहती हूँ हर एक अगर ये करे तो सेवा भी होगी और सत्युग भी जल्दी आ जाएगा। कभी भी परदर्शन ना चले, तो बाबा भी कह रहे थे मुरली में कि जितना जितना न व्यक्ति का न परिस्थिति का, दो ही चार तरह के संकल्प चलते हैं, देह के, देहधारियों के, पदार्थों के बारे में, और चौथा परिस्थितियों के बारे में। चार तरह के ही होते हैं ना व्यर्थ संकल्प। तो फिर आजकल तो इतना बाबा आत्मिक स्थिति आत्मिक स्थिति आत्मिक स्थिति, देहभास से न्यारे, सभी देह सभी जितने संबंध है लौकिक हमारे, तो सारे लौकिक अलौकिक में बदल गए, क्योंकि हमने शुरू से उनको आत्मिक रूप से देखा, कनेक्शन रहा, प्रेम प्यार रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि फोन करते रहो, कुछ भी हो जाए तो चले जाओ, वो देते भी थे कुछ। तो बाबा ने मुझे कहा एक दिन, बच्ची तुमको विश्व कल्याणकारी बनना है, तुम कभी भी किसी देहधारी ने आपको कुछ भी दिया है वो अपने तन पर नहीं यूज करना। उसके बाद से आज तक हम यज्ञ से जो मिलता है कपड़ा, जो कुछ अभी तक भी आते हैं शांतिवन, अपना बनियान भी लेके आते हैं, साड़ी भी लेके आते हैं, जो कुछ कपड़ा है सिलाई भी करवा के आते हैं। बाबा ने कहा बुद्धि खींचेगी, और अच्छे अच्छे जो बड़े सेवाधारी हैं और जिनको बनना है बड़ा, उनकी बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए। नहीं, बाबा अपना उदाहरण देता है कि किसी गोपिका ने एक बहुत अच्छी फ्रिल लगा के तकिए का गिलाफ भेजा, तो बाबा ने पहन लिया उसको दिखाने के लिए, वो तकिए में डाला, फिर थोड़ी देर के बाद उतार के बोला कि मैं सोऊंगा तो मुझे उसी का ख्याल आएगा कि उसने ये भेजा था, तो मेरी बाबा से कैसे तार जुटे। हमारे ब्रह्मा बाबा ने इतना ध्यान रखा। तो जितना जितना अपनी बुद्धि देखो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ भटकती है, तो फिर नहीं, हमारी दादी जानकी कहती थी अगर बुद्धि की तार नहीं जुटेगी तो करंट कहाँ से आएगी, बाबा की शक्ति कैसे आएगी, वो तो ब्लॉक हो जाएगी ना बीच में सारी। तो देखो अपना चार्ट देखो सभी कि मेरी कहीं बुद्धि जाती है, एक होता है भटकना, एक होता है अटकना, कहीं ना कहीं अटकी हुई है। भटकनी भी नहीं चाहिए और अटकनी भी नहीं चाहिए, कहीं भी मेरी बुद्धि यहाँ से बाबा के पास परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन जाना है, बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। इतनी तार कनेक्टेड हो और कहीं बीच में ब्लॉकेज ना हो, और वो हमारी बुद्धि। मैं जब ध्यान में जाने लगी तो बाबा ने मुझे सवेरे 4 बजे बुलाता था और सामने ही बेड पर बैठा के, बच्ची जाओ बाबा के पास, ये संदेश लेके आओ या ये देख के आओ, वतन में बाबा भेजता था। फिर 2 बातें बाबा ने बताई, एक तो अपनी बुद्धि दैवी रखना, कभी प्रभावित नहीं होना, और कभी भी इसको पर्सनल नहीं यूज करना। मैं उन दिनों में कॉलेज में थी, अरे आपको क्या, बाबा से पूछो आप पास होंगे कि नहीं, जाओ बाबा से ये पूछो, जाओ बाबा से ये पूछ के आओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को जो ऑफिशियली मिलेगा मैसेज में वो ही पूछती हूँ, ऐसे नहीं पूछती हूँ। नहीं, कहीं कहते जाओ मेरे लिए पूछ के आओ। अच्छा, गुरुवार को जाएंगे, बाबा को बताएंगे, फिर जो बाबा को कहना हो। तो बुद्धि पर बहुत, जितना मन पर अटेंशन है संकल्पों पर, उतना बुद्धि पर भी अटेंशन हो, तो क्या होगा कि लाइन क्लियर है ना। जिसको एक बार बाबा ने वायरलेस सिस्टम बोला था, वॉइसलेस, वायरलेस, वायरलेस होता है ना तो कहीं भी होते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। मैं जब पहले अमेरिका आ रही थी तो बहुत दूर है और अकेले आ रहे थे, तो अभी एक बाप दादा ने कहा 3 बातें ध्यान में रखना, एक तो अपनी बुद्धि बहुत नहीं इंगेज रखो, ये टेलीफोन है, तो मैं तुमको अगर फोन करूंगा तुम्हारे इंगेज है फोन तो तुमको तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तब से आज तक भी चाहे ट्रैफिक कंट्रोल, किसी ना किसी कारण से बुद्धि की साइलेंस, बुद्धि साइलेंट है तो मन भी हो जाता है। दूसरा, अपनी लाइन क्लियर रखो। बाबा ने कहा ये बहुत ध्यान रखना कि आपकी फोन की लाइन, बुद्धि क्लियर हो तो जो आप बाबा से पूछेंगे, कई कहते ना जवाब नहीं मिला, मैंने कहा पहले चुप तो करो, उसको सुनाने दो। जैसे कई लोग पूछते हैं ना प्रेयर और मेडिटेशन में क्या फर्क है, तो कहते हैं मेडिटेशन प्रेयर में बोलते रहते हैं और मेडिटेशन में सुनते हैं। कई कहते हैं बाबा से जवाब तो नहीं मिला, जवाब सुनने के लिए भी तो इतना क्लियर हो ना बुद्धि, तो इसलिए कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा विशेष ले जाओ संकल्प, लाइन क्लियर हो, निमित भाव हो, और सदा कुछ भी हो जाए मर्यादा पुरुषोत्तम का लक्ष्य, मुझे मर्यादा का किसी कारण से भी, कभी मोह वश, कभी लोभ वश, अभिमान वश, किसी कारण से भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। अपने जो नियम बने हुए हैं, अपनी जो दिनचर्या है, इंद्रप्रस्थ में निर्मल शांता दादी रहती थी सामने कमरे में, जहां दादी जानकी मेहमान रहती थी, तो 4:30 उठती थी वो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उठ करके वो ऐसे तैयार होती थी बिल्कुल फ्रेश। और मैंने कहा दादी ये सब क्या कर रहे हो, बोला भगवान के पास जाना है, श्रृंगार करके तो जाऊंगी ना स्वच्छ होके तो जाऊंगी। हम लोग तो ऐसे ही उठ के बैठ जाते हैं, कई बार मुंह भी नहीं धोते, पर निर्मल शांता मेरे को इतना, मतलब मेरा ये भी है आजकल कि हमें ऐसा करना है कि जो देखे वो भी सीख जाए, उसको भी प्रेरणा मिले। जैसे हमें दादियों से प्रेरणा मिली तो आज हमारे जीवन में, ऐसे हमसे भी जो कुछ हम करें, चाहे कोई कहे मैं थोड़ी बड़ी बहन हूं, बड़ियों को तो करना ही है, पर आपके भी तो साथ में है, साथी हैं और नए हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो नियमों से, हर प्रकार से अपने जीवन को जो चलाते हैं। बाबा तो खुश होते ही हैं, दुआएं मिलती हैं, परंतु हमारे हर कर्म से कोई सीख रहा है। मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रही, वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं। देखा हुआ जो होता है ना, वो जल्दी कॉपी कर लेते हैं, कहा हुआ में टाइम लगता है। जो कुछ देख लेते हैं ना इंसान, फिर कभी टाइम पर मैं भी ऐसा करूं। तो इसलिए बुद्धि को ऐसा करो, और स्वभाव जो है ना हमारा, वो केयरिंग होना चाहिए। किसी को किसी कारण से दुख ना हो। हमारी दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मनमोहिनी दादी, परंतु प्यारी भी बहुत थी, स्नेह भी बहुत देती थी। तो हमें भी गंभीर तो रहना ही है, पर उतना ही रमणीक भी रहना बहुत जरूरी है। खासकर आजकल भारीपन बहुत है, संसार का वातावरण, दुख का वातावरण, डर है, अनसर्टेनिटी है, क्या होगा, भविष्य क्या है, ये वो अंदर ही अंदर है। तो हमारा हल्कापन, हर्षित इतना भी अनुभव हो जाए, अनुभव हो, एक ऐसा कर्मयोगी जो उदाहरण भी हो। ब्रह्मा बाबा अंत तक भी उन्होंने कई बातों के फैसले दिए। क्लास करा करके बाबा ने अंत में, आज क्लास करा के फिर बाबा अव्यक्त हुए। तो ये भी नहीं कि हम बहुत काम है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो तो रहेगा। कारोबार है, तीन बातें हैं, स्व का पुरुषार्थ, कारोबार और सेवा, तीनों का बैलेंस चाहिए। कारोबार बढ़ेगा, पर मेरे स्वयं पर भी तो जितना सवेरे शाम का समय देना ही है, और फिर सेवा भी करनी है। आजकल कारोबार बहुत हो गया, राइट। हमारा तो पहले तो सिर्फ यहाँ के देशों का था, अभी भारत के भी फोन आते हैं, मीटिंग्स होती है, हम सब अटेंड करते हैं जूम पर। तो कारोबार तो भी क्या, सारे विश्व की सेवा है, तो कारोबार तो बढ़ेगा। लेकिन अटेंशन बिल्कुल अपने स्वयं पर भी है, सब पर है। और जो और सेवा करनी है उसमें भी ये नहीं कि मैं बिजी हूं मुझे क्लास नहीं करानी, मैं बिजी हूं तो मुझे योग नहीं करना, मैं बिजी हूं तो आज इसलिए योग मिस कर दिया 7 से 7:30 में। इतना तीनों का बैलेंस होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ना, बैलेंस है तो ब्लिस है, आनंद में रहेंगे, सिर्फ खुश नहीं रहेंगे। खुशी है तो फिर एक दिन दुख भी हो जाता है, उपराम रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इसलिए सब गुरुओं को एंड में आनंद का टाइटल देते हैं, परमानंद, सबका आनंद, और हम सदा आनंद में रहने वाले हैं। बातें तो कितनी हैं, बैठे रहे, सुनाते रहे, लेकिन अच्छा लग रहा है आप लोगों को सामने देख करके। प्रभा दीदी बैठी है, मंजू बहन बैठी है, कुछ पूछना है, सब ठीक हो?
ओम शांति दीदी।